अब यह भी कमजोरी, अब कमजोरी कितनी हमारे अंदर, वो सारी वीकनेस गिनाई जा रही है, वो डॉक्टर बुढ़े वाली बात से, यह भी कमजोरी डॉक्टर वाली बात है, यह भी कमजोरी। अब उसके अंदर दूसरी कमजोरी क्या थी कि मैं तो अनमैरिड हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं साधु हूं, और राजा जनक ने कई सैकड़ों की संख्या में रानियां रखी हैं। ओए होए होए, राजा जनक गृहस्थी भाई कैसे शीश नवाऊं जाई। सुखदेव बोले शब्द विवेक का, हम स्त्री का मुख नहीं देखा, कि मैंने तो स्त्री का मुख भी नहीं देखा है, मां के जन्म होते ही मैं निकल के भाग लिया था, अपने दूर जाकर के जंगल में साधना करता हुआ अब मैं यहां आया था, और ईब मैं एक योगी अंडी पा कर एक गृहस्थी आदमी को कैसे, क्योंकि गुरु का आगे तो नतमस्तक भी होना पड़ेगा, प्रणाम भी करने पड़ेंगे, दंडवत भी करनी पड़ेगी, सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, जब फौज में भर्ती हुआ तो सारी ही रिहर्सल करनी पड़ेगी और ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी, तभी वो फौजी बनेगा। तो वो कमजोरी अटकी। तो उन्होंने कहा कि देखो महर्षि जी, जब भगवान ने आपका आदेश दे दिया फिर सोचने की आवश्यकता कहां रहेगी, फिर अगर मान ले तो इन्हों घूमे गया और नाम तूने लिया नहीं, गुरु बनाया नहीं, तो कहां जाएगा, गधा बनेगा गधा। अब जो बुद्धिमान होते हैं वह सच्चाई कहे बिना चूक क्या नहीं करते। जब उन्होंने ऐसे जोर से कहा कि तू गधा बनेगा, तो उसकी अंदर, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर की सब जितनी भी घटनाएं हमारे अंदर आत्मा के अंदर अंतःकरण में फीड है, वो बिल्कुल जो की तो फिल्म हमारे अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो एक वह फिल्म चल पड़ी उसकी। तब सुखदेव को याद आया कि वो एक बार गधा बना हुआ था, तब उसने याद आ रहा ऐसे की आंखों में पानी आ गया, तब कहने लगा भाई महापुरुषो तुमने तो मेरी आंख खोल दी, अब मैं उपदेश लूंगा। मैं एक समय गधे की योनि भोग रहा था, सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, उस समय कुम्हार के पजावे पे मैं चढ़ता था, ऊपर से पक्की ईंटें मेरे ऊपर कमर पर लाद देता था, कच्ची ईंटें नीचे लाकर पक्की उतार देता था, नीचे से फिर कच्ची ईंटें भर के ऊपर पजावे पर ऊंचे 40 फुट ऊंचाई पर चढ़कर डाला करता था। अत्यधिक कार्य करने से, समय पर जल आदि प्राप्त ना होने से मेरी आंखें खत्म होगी, मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे मालिक ने भी धक्के मार दिए और मैं निकट आऊं तो लठ मारे चालता कर दे। मैं चलता चलता एक जंगल में जा रहा था, एक रास्ता पकड़ लिया, उस रास्ते जा रहा था, आगे एक नाला था, मुझे दिखाई कुछ दे नहीं रहा था, उस नाले के अंदर मैं फंस गया, उसमें ऐसा फिट हो गया मेरे चारों पैर नीचे और आगे से मुंह और पीछे से कमर और पीठ पिछला हिस्सा फिट हो गया, कती पुड़ी बन गई, एक पुल बन गया मैं उस नाले के ऊपर। और वहां जंगल में दूर स्थान पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता जाता था, तो वो उन्होंने मुझे निकाला नहीं, मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, मेरी पुड़ी बना ली। एक हफ्ते तक भुगत कर प्यासा और भूखा मैं मरा, तड़फ तड़फ गए। अब मुझे वो बात याद आ रही है, अब मैं राजा जनक के पास जाऊंगा और उपदेश दूंगा। तो यहां बताना चाहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। अरे सुखदेव जैसे महापुरुषों के ला ऐसी बुरी बुरी हालत दुर्गति हुई, गधा बना पजावे पर गधा, खर माने गधा, बना पजावे खर वो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, अब बखत विचार कर ले, अब पेंडा पंथ पकड़ वो साधना ग्रहण कर जिससे सब छुटकारा हो, पूर्ण संत की तलाश कर। अब इन कथाओं से आपने, एक तो ये हुआ कि गुरु धारण करना अति आवश्यक है, गुरु के बिना बात नहीं बनेगी, और गुरु भी नकली ना हो, पूर्ण गुरु, पूरे गुरु की सेवा की जय। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने, गुरु वचन को निश्चय माने, जो गुरु बना लिया उसके प्रत्येक आदेश का पालन हो और गुरु भी पूर्ण हो, पूरे गुरु की सेवा अर्थात उसकी पूजा में लगे, गुरुदेव के द्वारा दिए गए मार्ग को पूरे गुरु के द्वारा लगे बताए हुए मार्ग पर लगे और फिर गुरु के वचन को अवश्य पालन करे। तो गुरु भी होना चाहिए, पर गुरु किस कैसा, जैसे कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है वो भी गुरु है, जो परब्रह्म तक की साधना बताता है वो भी गुरु है, जो पूर्ण ब्रह्म तक की साधना बताता है वो भी गुरु है। लेकिन इन गुरु गुरु में भेद है, जो पूर्ण ब्रह्म की साधना बताता वो सत्य गुरु है, वो तत्वदर्शी संत है। अब सतगुरु तो इसलिए कहना पड़ता है कि जो अन्य गुरु है वो सत्य से परिचित नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं जानते, इसलिए अगर एक और ज्ञान ना होता, अन्य भ्रमित करने वाले ना होते तो गुरु शब्द ही बहुत था। लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ता है कि उससे अलग कोई और संत है जो तत्व ज्ञान से परिचित है, उसको सतगुरु कहते हैं। अन्य कोई सतगुरु नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं सच्चा, वो गुरु सच्चे कैसे हो सकते हैं। तो जो भी जिस लेवल का, जिस स्तर का गुरु है और उसने जिस भी देव या ब्रह्म या परब्रह्म या पूर्ण जिसकी साधना करनी है, उसी के उस गुरु से संपर्क होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर गुरु के प्रति आपका कैसा लगाव हो। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अब कहते हैं कि मेरा जो संत है यानी जो गुरु पद पर मैंने बैठाया है उसको मेरा ही स्वरूप जान, उसको अन्य मत समझ, क्योंकि फिर आपके मन में भगवान जैसी भावना नहीं बनेगी, प्रभु वाली भावना नहीं बनेगी। तो आप प्रभु जब आपके सामने आएंगे तो भी आपके अंदर जो गुरु जी को देखने से कसक होती है, गुरु जी के सामने आने से जो आप में प्रक्रिया होती है, तो यही प्रक्रिया का अभ्यास बनेगा। और जब आप वास्तव में परमात्मा के पास जाओगे तो वो प्रक्रिया आपकी वहां काम आओगी, जो रिहर्सल आपने यहां कर रखी है। अगर ये रिहर्सल आपकी ठीक नहीं होगी, वहां पर भी भगवान के सामने भी ऐसे पर पेश आओगे गलत ढंग से, तो वहां से आपकी भक्ति रिजेक्ट कर दी जाएगी, कैंसिल कर दी जाएगी। इसलिए आपको यहां ये ज्ञान हर तरीके का, हर तरह का सब फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं और आगे चलने की विधि भी बताई जाती है, भक्ति करने का तो तरीका भी आपको समझाया और सुनाया जाता है। अब सुखदेव ऋषि की कथा और पूरी कर देते हैं, उसके बाद गरीबदास जी की कथा आपको सुनाएंगे शेष, क्योंकि इस सत्संग के अंदर हर पहलू पर विचार दिए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक क्लास में अर्थात प्रत्येक सत्संग में सुबह और शाम के में स्टूडेंट बदलते रहते हैं, कुछ एक वही होते हैं, फिर उनके लिए भी ज्ञान बार बार सुनना अति आवश्यक है। जैसे प्रतिदिन खाना खाना आवश्यक है सुबह शाम, इसी प्रकार ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी जो आहार है ये भी सात्मा को सुबह और शाम अवश्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कथा मैंने सुन रखी है, दो बार सुन ली, तीन बार सुन ली, ये सुना मैं गुरु जी, नहीं, यह भी कमजोरी है, डॉक्टर वाली बात, यह भी कमजोरी है। क्योंकि जैसे स्वस्थ व्यक्ति सुबह भी खाना खाता है, शाम के समय भी उसको भूख लगती है, वही रोटी होती है वही सब्जी, भूख जब सभी लगेगी तो सब्जी नहीं दिखती, उसने रोटी रोटी दिखे, कैसी ही हो रोटी वही होती है, और समय पर भूख ठीक लग रही है तो समझो आप स्वस्थ हैं। और जब आपको सुबह दाल रोटी खा ली, शाम ने दाल ना मिली और रोटी रोटी मिल गई, तो समझो आप न सोच रहे हो कोनी रुचि नहीं बन रही, शायद दाल इसके साथ खाता और दाल भी बनवा ली तो फिर भी ना खाएगी, रुचि नहीं बनी, तो अर्थात आप अस्वस्थ हो या तो आपके बदहजमी हो चुकी है, आप स्वस्थ नहीं हो। स्वस्थ अवस्थ व्यक्ति को आनाकानी नहीं हो सकती, रोटी की भूख अवश्य लगती है। इसी प्रकार रोटी वही होती है, आटा वही होता है, और सुबह से आप भूख लगती है तो आप स्वस्थ हैं। इसी प्रकार आत्मा की सतिथि जाने, ये इसका पैमाना, इसके इसको इसका तापमान नापन का थर्मामीटर है, कि जब आपको सुबह कथा सुनी, मान ले शाम ने विवाह सुना दी दोबारा और आपके मन में न्यू आ गया, तो सुबह सुनी थी तो यह भी कमजोरी है। अब अभी आपके अंदर वो दोष, कोई ऐसा दोष विद्यमान है, आप स्वस्थ नहीं है, आपकी भक्ति में कोई खोट उत्पन्न हो गया, उसका ट्रीटमेंट क्या है। जैसे बीमार आदमी को रोटी अच्छी नहीं लगती तो ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका उपचार क्या है, कि वो कड़वी गोली खानी पड़े, ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ये सत्संग के वचन वो कड़वी गोलियों का भी काम करते हैं, ना चाहते हुए सत्संग सुनना चाहिए, कुछ देर के बाद देखना फिर आनंद आने लग जाता है। ऐसे ही कड़वी गोली खाने के उपरांत फिर वो बुखार कम हो जाता है, और बुखार जब कम हो जाता है तो रोटी स्वादिष्ट लगने लग जाती है, सुबह शाम दोनों ही। इसीलिए तो इस प्रकार ये कथाएं सुनानी पड़ती हैं। अब सुखदेव ऋषि वहां स्वर्ग से आकर के नीचे आ गया। उसने सोचा मेरे पिताजी व्यास जी, वेद व्यास जी बहुत विद्वान हैं, उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, कृष्ण द्वैपायन उर्फ वेद व्यास। तो वेद व्यास जी के पास आए, उन्होंने सोचा कि अपने पिताजी से और पूछ लो एक बार, वो भी सच्ची बात बताएंगे, विद्वान पुरुष हैं। वो सोचा नहीं था जैसे भी बात बन जाए भाई मैं कोई और गुरु बना लूं, राजा जनक के पास ना जाऊं, क्योंकि वो तो गृहस्थी आदमी है, हैं, वो राजा है और मैं उसको राजा के सामने मैं ऐसे गृहस्थी के सामने शीश निवाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कमजोरियां बहुत है हमारे अंदर, ये सभी सत्संग से निकलती हैं। तो व्यास जी के पास गया, पहले तो घर से निकल गया था, काफी वर्षों के बाद जब दोबारा व्यास जी के पास गया, जब व्यास जी ने सीने से लगाया, आ मेरा पुत्र, मैं तो तेरे दर्शन को भी तरस रहा था, तू कहां रहा इतने दिन, क्योंकि जन्म होते ही चला गया था सुखदेव जी, फिर लौट कर तब आया था जब वो खूब युवा हो चुका था। तो व्यास जी ने पूछा, फिर व्यास जी के सामने भी सुखदेव ऋषि जी ने अपनी वह समस्या बताई जो भगवान विष्णु के लोक में जाने वाली, और विष्णु जी को ने उसको स्वर्ग में ना रहने की परमिशन देने वाली, क्योंकि उसके उसने गुरु नहीं बना रखा था। तो व्यास जी ने कहा, अरे बेटा, अरे महर्षि, मैं तो नहीं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, और तू तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा, गधा बनेगा गधा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आग अधीन। कहते राम कृष्ण तो बड़ा कौन है, तू राम कृष्ण से तो बड़े नहीं हो, राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए, श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को अध्यात्मिक गुरु बनाया, संदीपनी जी उनके अक्षर ज्ञान के गुरु थे, केवल शिक्षा के गुरु जैसे टीचर होते हैं एजुकेशन वाले, और श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु बनाए। तो यहां बताना चाहते हैं कि जब राम कृष्ण जिनको तुम सुप्रीम पावर मानते हो अपने लेवल तय अपने दिमाग तय, और उनने भी गुरु बनाए, तो तुम बगैर गुरु के कहां ठिकाना होगा। इस बात को सुखदेव व्यास जी की बात सुनी, फिर व्यास जी के सामने अपना दुख व्यक्त किया कि हे पिताजी, भगवान ने तो एक और समस्या हमारे मेरे सामने पैदा कर दी। व्यास जी ने कहा कि क्या समस्या आ गई, उन्होंने कि भगवान श्री विष्णु जी ने कहा है कि आप राजा जनक से उपदेश ले लो, राजा जनक तो बाल बच्चेदार है, राजा है, और मैं सन्यासी हूं, और मैं कैसे जाऊं, कैसे उसको शीश निवाऊं। तब व्यास जी बोला, बेटा एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भगवान का आदेश है, और दूसरी तरफ तो समस्या को देख रहा है, समस्या तो और गहन पैदा कर लेगा तू, भगवान का आदेश है तो फिर सोचने की आवश्यकता कहां है तुझे, शीघ्र चला जा, गिर जा उसके चरणों में जाके महापुरुष के, और राजा जनक बड़े महान आत्मा हैं। अब सुखदेव को कोई शेष विकल्प नहीं बचा, तो चल पड़ा राजा जनक के मथिलापुरी में। राजा जनक को जब पता चला कि एक सुखदेव नाम के महर्षि आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके द्वार पर आए हैं, राजा ने अच्छा एक पलंग पर आसन लगवाया, स्वच्छ साफ सुथरे धोए हुए कपड़े बिछवाए, और ऋषि को बुलाया कि आओ ऋषि जी बैठो, सिंहासन पर विराजमान हो, और स्वयं के लिए नीचे दरी बिछवा ली, आप वहां बैठने लगे। उस ऋषि का सन्यासी का आदर करते हुए उनको तो ऊपर आसन पर बैठा रहे हैं, स्वयं नीचे बैठना चाहते हैं, तो ऋषि सुखदेव नीचे ही बैठ गया राजा जनक के पास में, और कहने लगे नहीं प्रभु, आप आसन पर विराजमान हो जिए और मैं यहां बैठूंगा, मैं आपको गुरु धारण करने आया हूं। अब राजा जनक कहते हैं ऋषि जी मेरे से कोई गलती बन गई क्या, मेरा जो है क्यों उपहास करते हो मेरा। कहने लगे नहीं, मैं सचमुच आपसे उपदेश लेने आया हूं। अब राजा जनक समझ गए थे भाई जैसे कोई नाम देता है गुरु तो उसकी शिष्य को थोड़ा बहुत साफ अवश्य करता है, देखता है कितना किसमें अभी खोट है या नहीं है। राजा जनक ने कहा ठीक है आप विश्राम कीजिए, शाम का समय था तो कहने लगे आप विश्राम कीजिए, सुबह आपको उपदेश दिया जाएगा। उनको एक ऐसे कमरे में ऐसे मकान में उनका सैन करने का व्यवस्था कर दी अलग से सेपरेट। उसमें दो तीन जो स्त्रियां थी बहन बेटियां थी राजा जनक की जो रानियां थी उनमें से दो की एक की ड्यूटी लगाती कि आप जाइए और इस राजा की परीक्षा लीजिए ना इस ऋषि की परीक्षा लीजिए। अब शाम के समय हो गया, रात्रि के समय वो लड़की उस सुखदेव ऋषि की के उस कमरे में प्रवेश किया और जाकर के राजा ऋषि सुखदेव के पलंग पर बैठ गई। अब सुखदेव ऋषि की आंखें अभी जाग रहा था, लेटा हुआ था, उसके बैठते ही वो बहुत दूर उसी पलंग पर लड़की से 3 फुट की दूरी पर बैठ गया। वो लड़की और थोड़ी सी उसकी साइड की तरफ होने लगी तो उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा ये बहन आप बाहर चली जाइए, आप किस लिए आए हैं। कहने लगी मेरी राजा ने ड्यूटी लगाई है, मैं आपकी यहां सेवा करने आई हूं, आपको कोई पानी की चाय दूध की आवश्यकता पड़े फल रात्रि में तो बोला मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आप बाहर जाइए। वो आ गई तो उसने राजा को बता दिया कि ऐसी ऐसी सती थी। कहने लगा ठीक है। अब सुबह के समय राजा ने कहा अपनी पटरानी से जो मुख्य औरत थी जो सबसे बड़ी समझदार वो भी पुण्यात्मा थी भक्ति युक्त थी, कमाई थी उसके अंदर भगवान के नाम की, राजा ने अपनी रानी से कहा कि मैं स्नान करूंगा, स्नान की व्यवस्था कीजिए। उस मुख्य रानी ने वहीं पर एक बड़े कमरे में बड़े दरवाजा होता था बड़ा गेट होता था वहीं पर जहां पर सुखदेव ऋषि बैठा था, आसन पे नहीं बैठा वहां पर लेकिन नीचे बैठा था, सुबह सुबह स्नान करके आके नीचे दरी बछवा के वहां बैठा हुआ था। और राजा जनक ने कहा कि मैं स्नान करूंगा मेरे लिए पानी तैयार करो, तो वहीं पर चूल्हा बना के ईंटों का और नीचे अच्छे लकड़ लगा के पतीला धर दिया पानी का, वो पानी वो जल ऐसे उबले जैसे चाय का पानी उबला करे चाय बनाते समय। और उस रानी ने वही नौकरों से उसके उबलते हुए पानी के चूल्हे के साथ में पाटड़ा डलवा लिया एक फट्टा सा नहाने का लकड़ी का। राजा जनक उस तख्त पर बैठ कर स्नान करने के लिए कपड़े उतार कर धोती धोती बांध कर बैठ गया और जो मुख्य रानी थी वो उस उबलते हुए जल में थे लोटा भरे पानी का राजा के सर के ऊपर गेरा आत्म मसलन ऐसे स्नान करा रही उबलते पानी थे और वो रानी राजा पर पानी गेरे पानी डाले उसके सिर पे और सुखदेव यूं करे अगजल गया यो नहा गर्म पानी गिर रहा है राजा जनक पर और सुखदेव इकट्ठा हो रहा है अकीब जलेगा लेकिन कुछ नहीं हो रहा लड़की ना उस रानी का हाथ जल रहा है ना राजा के ऊपर कोई पानी का गर्म पानी का प्रभाव है। और वो तो राजा जनक ने कहा उसके मन की बात जान के कि सुखदेव के अंदर क्या दोष भरा है। कहने लगा ये सुखदेव ऋषि व्यास के बेटे आज आज्ञा उठ के तो किसा महापुरुष है बेरा पड़ेगा, तू कैसा ब्रह्मचारी है कैसा ऋषि है, मेरे स्नान करने के बाद जो जल ये गटर के अंदर जा रहा है नाली में तू इस मांगुली दे दे बेटा मैं जान जाऊंगा तू किसा ब्रह्मचारी कैसा साधक है। बोला ना मैं ना दोष मांगुली मेरी तो सारी उंगलियां कट जाएगी इतना गर्म है, उठा नहीं वहां से, इन्होंने बोला नहीं 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 ये तो बहुत गर्व है। तब राजा विहंस देई जब तारी, राजा हंसा जोड़ते और ऐसे ताड़ी बजाई और मुझे स्नान करावे नारी। जिस औरत को तू सकल भी ना देखना चाहता था, अपने आप को एक महापुरुष माना फिर ताज, ये रानी, ये स्त्री भक्ति से इतनी युक्त हो गई है कि साधना करने से इसके ऊपर भी ये गर्म वस्तु अफेक्ट नहीं करी, प्रभाव नहीं करी। ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता, इंद्री क्रम लगाओ किसके, जैसे जीव्या लेप नहीं मधुरस के। ने बोला बेटा तने के भक्ति करी, क्या योग किया, अब तू इस चीज से भी डर रहा है कि श्याम के समय तेरे पास स्त्री भेजी मैंने और तू उसको स्त्री मान रहा है, तेरे अंदर विवेक नहीं है, तेरे अंदर आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, तुझे आत्मज्ञान भी नहीं है। आत्मज्ञान सबसे प्रथम कड़ी का होता है, आत्मज्ञान कि ये आत्मा कौन है, हम कहां से आए, ये प्राइमरी क्लास का ज्ञान तुझे ये भी नहीं, ये स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, ये शरीर क्या है, अंदर आत्मा क्या चीज है, तू ये भी नहीं जानता और बना खड़ा महर्षि और सन्यासी। तो क्या कहता है कि जैसे आपने आपके पलंग पर ये रानी बैठी, आप घबरा गए, उठकर चल गए, आपने इसको, क्या ये अग्नि थी तुझे फूंक देती, तेरे अंदर दोष था तुझे इसलिए इस दोष लगा, तुझे तेरे अंदर कमी थी, कमजोरी थी जिससे तू घबरा गया, नहीं तो तू बैठता, हाँ बहन आ जा बेटी, क्या बात है बेटा कैसे आ गया, बिल्कुल भी तेरे अंदर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए थी अगर तू आत्मज्ञानी भी होता, तू आत्मज्ञानी भी गोजा। आत्मज्ञानी को क्या होता है कि जैसे सांग होया करते पहले गांवों में, जैसे आजकल ते फिल्म चल पड़ी, पहले सांग होया करते, स्वांग जिसको सुधी सी हिंदी में स्वांग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता था कि वो एक कथा सुनाया करते थे, एक मंडली होती थी नाटक मंडली, उसको स्वांग स्वांगी कहा करते थे। तो वो क्या करते थे, लड़का ही लड़की का रोल करता था, एक राजा बनता था एक रानी बनती थी। तो उनको सांग जब हो रहा था तो उसमें राजा फिर नाचने गाने की व्यवस्था करते हैं, तो लड़के ही लड़कियों का सुंदर रूप बना करके अंग आर्टिफिशियल पार्ट लगा, अंग लगा करके वो स्त्री बन करके डांस करते थे, भूमिका करते थे, अभिनय करते थे। तो एक लड़का प्रथम बार सांग देखने गया, उसने अपने मित्र से जो बार बार सांग देख रहा था, देख चुका था, उसने कहा देख कितनी सुंदर लड़की है, बहुत अच्छा डांस कर रही है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं ये लड़की नहीं है लड़का है। ने बोला नहीं तने नहीं तुझे नहीं मालूम। तो उसने उसके भ्रम को निवारण करने के लिए उनके वो नाटक पूरा होने के उपरांत जहां वो ठहरे हुए थे उस गांव में नगर में उनके साथ साथ लेकर गया। उन बच्चों ने जाते ही वो आर्टिफिशियल जितने भी अंग लगा रखे थे लड़कियों वाले उतार उतार के खुट्टी पर टांग दिए और कच्चे कच्चे में खड़े हो गए। तब वो कहने लगा रहा सचमुच ये तो लड़के थे लड़की को ना। तो अगले दूसरे दिन जब वो नाटक देखने गया वो लड़के नाच रहे थे लड़कियों का वेश बनाकर स्वांग करके, उनको लड़की नजर नहीं आ रही थी, वो लड़के ही नजर आ रहे थे। ऐसे ये आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने के उपरांत स्त्री और पुरुष के ऊपर ये कवर दूसरा दिखाई देगा, अंदर आत्मा एक ही नजर आएगी और तत्वदर्शी संत के अंदर आत्मज्ञानी के अंदर भी वो गंदी भावना नहीं रह सकती। तो क्या बताते हैं कि राजा विहंस देई जब तारी और मुझे स्नान करावे नारी, ऐसा योग कमाया। वो कहता है राजा जनक जी कहते हैं कि ऐसा योग कमाया पूता कि क्या भक्ति करी बेटा तूने, और क्या हुआ जो इंद्री धूता, इसे क्या क्या मामला सिद्ध हो गया, तूने बाल ब्रह्मचारी रह गया, इंद्रियों पर काबू पा लिया, काबू कैसे पाया, जैसे जीव चठोरी है मांग के दे पकौड़े खाऊं लड्डू खाऊं नहीं खाता, कंट्रोल कर लिया। कहते हैं वो तो बात अलग चीज है, अच्छी बात है कर लिया तो, लेकिन इससे बात क्या बनी, जैसे एक खेत संवार कर छोड़ दिया अड़ंगा का, उसमें कोई कुबाड़ जाम नहीं रहा, अरे खेत पड़ा बगैर ठीक किया बिना बाया हुआ बगैर संवारा हुआ जाड़ बोझड़े न्यू के न्यू खड़े हैं, और जो संवार रखा है जिसमें सब कुछ तैयारी कर रखी, और बीज दोनों में बीज उसमें बीजा नहीं तो दोनों एक जैसे हैं, अर्थात दोनों में कोई लाभ, दोनों व्यर्थ ही है। तो तूने साधना ठीक करी को ना, ये तो एक कंट्रोल कंट्रोल किए फिर रहा तू। तो फिर उसने कहा कि नाम परमात्मा की भक्ति में ना तो कोई शादी बाधक होती है, और नहीं कराता है तो भी अच्छी बात है, करा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साधना शास्त्र अनुकूल करनी पड़ेगी और साथ में अपनी जो मर्यादा में भी रहना पड़ेगा। तो क्या बताते हैं कि इंद्री कर्म लगाओ किसके, जिभ्या लेप नहीं मधुरस कह। जैसे हमने देखो मन की इच्छा बनी कि शहद खाऊं, अब शहद को जीभ ने प्रयोग किया, उसका आनंद जीभ के माध्यम से आत्मा ने लिया, मन ने लिया, लेकिन जिभ्या पर उसका कोई लेप नहीं रहता, खाने के बाद जीभ के ऊपर उसका कोई लगाव नहीं रहता। इसी प्रकार जब हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लगते हैं तो केवल इंद्रियों के कंट्रोल मात्र से बात नहीं बनेगी, इंद्रियों की कंट्रोल के बाद फिर हमने वो साधना भी करनी होती है। जैसे कंट्रोल कितना होता, संयम, व्यभिचार नहीं करे, विवाह किया है संतान उत्पत्ति करे, व्यभिचार नहीं करे, फिर किसी का चोरी चप्पा नहीं करे, इस तरह की जो बकवादे हैं इन पे कंट्रोल करे, मन चाहता सिनेमा देखो, टीवी देख लूं, अच्छे गाने सुनो, इनको तो रोकना स्वाभाविक है, आवश्यक है, अवश्य है, और भक्ति मार्ग का नियम है। इसके साथ साथ भक्ति वाला बीज भी बीजना पड़ेगा, और बीज भी सही हो, आम की जगह पर किक्कर बोली बबूल, और उसकी सेवा भी कर रहे हैं, उसकी सिंचाई भी कर रहे हैं, अब सोचे बाग बनेगा आम लगेंगे, नहीं वो तो सूर लगेंगी। गलत साधना करने से भक्ति भी कर रहे हो, गलत नाम लेकर के, गलत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं जो कर रहे हैं वो साधनाएं भी खूब कर रहे हो, और मेहनत भी खूब है, पैसा भी लगा रहे हो, लेकिन अंत में वो शास्त्र विधि रहित होने के कारण हानिकारक होगी, लाभ नहीं देगा। जैसे आम के स्थान पर बबूल बीज लिया, हमने करनी थी पूर्ण परमात्मा की साधना, कर ली दूसरे देवताओं की, ये तो बबूल बीज लिए। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15, 12 से लेकर 23 तक जो निर्णय ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता, स्वयं भी कहता है मेरी भक्ति भी अनुत्तम है और इन दूसरे देवताओं की भक्ति भी कति घटिया से घटिया है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है, उसकी साधना करनी चाहिए, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कीजिए, उसके बताए अनुसार साधना करके अपना मोक्ष प्राप्त कीजिए। तब सुखदेव ऋषि जी ने राजा जनक से उपदेश लिया और अपना, अब राजा जनक तो विष्णु जी का उपासक था और विष्णु जी की साधना करके सुखदेव स्वर्ग लोक विष्णु लोक में चला गया, इतना लाभ हुआ। जैसे किसी का तहसीलदार मेल है, तहसीलदार लेवल का लाभ दिवा देगा, तो ऐसा हुआ। राजा जनक पहले राजा अम्बरीश थे, वही आत्मा जो राजा जनक वाली है, वो राजा जनक पहले सतयुग में राजा अम्बरीश थे, और वही राजा जनक हुए जो सीता जी के पिताजी कहलाए मथिला नरेश, और वही राजा जनक फिर गुरु नानक देव जी की आत्मा, वही गुरु नानक देव जी पंजाब में तलवंडी के अंदर उत्पन्न हुए, और फिर उनको जब वो वही आत्मा गुरु नानक देव जी के रूप में आई, उस समय पूर्ण परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए, सत्तत्व ज्ञान से परिचित कराया, फिर उस पुण्य आत्मा ने ये सच्चा भक्ति मार्ग अपनाया और जन जन को समझाया। अब ये क्या करता है, काल कैसे ठगता है इस जीव को। राजा जनक विष्णु तक की भक्ति की, विष्णु लेवल की, राजा अम्बरीश रूप में भी की, राजा जनक हुए उसी पुण्य के आधार पर फिर वो कुछ देर स्वर्ग में रह गए, फिर दोबारा मनुष्य शरीर हुआ, वह बैटरी फिर पूंजी शेष थी, उसके अनुसार राजा जनक बने। उसके जब राजा जनक बने तो वो राजा जनक का समय पूरा करके राजा जनक वाले जीवन का पूरा करके भक्ति करके जब वहां से वो चला विमान में बैठकर विष्णु के लोक को, अब काल का जाल बड़ा भयंकर है पुण्यात्मा, यो ऐसे ठगता है अपने को जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होता। तो ये क्या, जब जा रहा था विमान तो इसका विमान काल ने, ब्रह्म ने ऐसे स्थान से गुजार दिया जहां पर नरक में हाहाकार, एक अलग नरक बना हुआ था, उस नरक में हाहाकार मच रहा था, उसमें 12 करोड़ आत्माएं बिलख रही थी, कर्म भोग रही थी, हाहाकार मचा रही थी। राजा जनक, क्योंकि साधु में दया होती है, भक्त में दया होती है, राजा जनक ने उन पायलट से कहा कि विमान रोको मेरा, उन्होंने विमान रोक दिया कि ये किसके रोने की आवाज है, इसका पता लगाओ। साथ में जो पारखत थे, उसको लेने आए थे नौकर भगवान के, वो कहने लगे कि राजा यहां पर एक नरक है, इसमें अपने किए हुए कर्म का भोग प्राणी भोग रहे हैं, आप चलो, आपको आपका सफर आगे का है। राजा जनक ने कहा कि नहीं, इन सभी को नरक से बाहर निकाल दो। अब वो कहने लगे कि आप अब राजा नहीं हो, आपका हुक्म यहां नहीं चलेगा, यहां तो धर्मराज का हुक्म चलेगा, उनके आज्ञा से सब कुछ होता है। कहते धर्मराज से मुझे मिलाओ, धर्मराज को बुलाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा जब तक इनको नहीं निकाल दोगे। तब धर्मराज के पास पुकार गई, धर्मराज न्यायाधीश वहीं आकर प्रकट हो गए, वहां आ गए, कहने लगे राजन क्या बात है। राजा जनक ने कहा कि इन सब 12 करोड़ जितने भी इसमें जीव हैं सबको निकाल दो। राजा, उस न्यायाधीश ने कहा इसमें 12 करोड़ प्राणी हैं जो अपनी करनी का दंड भोग रहे हैं, अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं, इनको नहीं निकाला जा सकता, कोई विधान नहीं है इनको निकालने का, ये प्रभु का नियम है। राजा जनक ने कहा कि मुझे भी इसमें डाल दो, मैं नहीं जाऊंगा आगे। अब उन धर्मराज ने सोची अच्छी आठ पकड़ ली भाई, इसने तो अच्छी हटकी। फिर उसके दिमाग में बात आती है, कहने की एक विकल्प है इसका। धर्मराज ने कहा कि एक विकल्प है। राजा जनक ने कहा बोलिए क्या विकल्प है, मैं वही करने को तैयार हूं कि तो आप अपने पुण्यों को इनको दे दीजिए, इनको हम निकाल देंगे। राजा जनक ने कहा बोलो कैसे करना है। कहा कि आप अपने पुण्य संकल्प कर दीजिए इन सब प्राणियों के नाम पे। तो राजा जनक ने अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए। देख काल का जाल, अब बंदी छोड़े, अब ये तत्व ज्ञान है जो आपको हर तरह से सचेत करेगा हम कहां कहां धोखा खाते रहे। आधे पुण्य, आधी भक्ति उन 12 करोड़ पुण्य दे दी, 12 करोड़ जो नरक में भोग रहे थे वो नरक खाली करा दिया। अब क्या हुआ कि वो विमान में बैठकर सभी 12 करोड़ आत्माएं कहां पहुंच गई, कॉमन स्वर्ग में चली गई। राजा जनक विष्णु लोक में चला गया। अब जब तक राजा जनक के द्वारा डोनेटेड वो पुण्य रहेंगे, दान किए हुए पुण्य उन प्राणियों के साथ रहेंगे, वो 12 करोड़ के साथ, मान ले उनके आधार पर उनको किसी को 10 वर्ष का समय स्वर्ग का बन गया, क्योंकि जितने दिन की पुण्य उनकी जेब में है उसके आधार पर वो स्वर्ग में रहेंगे। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पुण्य उन्हीं नरकों में डाले जाएंगे और उनके उनको वो पाप भी भोगने पड़ेंगे जो उनके बैलेंस रखे थे, वो खत्म नहीं हुए। ये विधि उनको खत्म करने की नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति से और सच्चे नाम और सार नाम की शक्ति से ये पाप नष्ट होंगे, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है, कोई तरीका नहीं। उससे ऐसे होते हैं जब ही, जैसे जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे अग्नि चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब राजा जनक स्वर्ग की पीड़ में, जो उसकी शेष पूंजी बची थी, शेष पुण्य बचे थे स्वर्ग में रहे, उन पुण्यों को खत्म होने के बाद फिर श्री नानक जी की, नानक जी बने राजा जनक रूप में। कितने हाथी घोड़े, कितने ठाठ बाठ पालकियां, कितना सेना थी। अब वो पुण्य खत्म होने के बाद फिर एक सिंपल मैन कालूराम मेहता के घर पे वो पुण्य आत्मा का जन्म हुआ। वहां से नए सिरे से बिजनेस व्यापार शुरू किया, उसी समय एक नौकरी करने लगे। जब तो पहले दुनिया ना जाने कितने नौकर थे उस पुण्य आत्मा के, जब वो राजा थे और स्वयं एक नवाब के मोदी खाने की नौकरी श्री नानक जी कर रहे हैं। ऐसे ये विधान बता रहे हैं इस काल के जाल का, पूर्ण परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने बताया आकर के। तो फिर उस पर उस पुण्यात्मा को परमात्मा आकर मिले कि ये पूर्ण संघर्षशील आत्मा है, कई युगों से भटक रही है, परमात्मा की चाह है, इसको दिशा ठीक नहीं मिली। वो दयालु खुद आते हैं और बेई नदी पर जो स्नान करने गुरु नानक देव जी गए हुए थे, वहां से दरिया में डुबोने का बहाना करके और उनको सतलोक लेकर गए, सचखंड लेकर गए। फिर आकर के उनको वो सच्चा नाम सतनाम दिया, जैसा जो शाम को आपको दिखाया था वो वही ना। उनको आदेश था कि और कोई नहीं बताना अभी, क्योंकि ये काल के जाल के दूतों के हाथ पड़ जाएगा सच्चा नाम। फिर ये जब ये भक्ति काल आएगा, भक्ति काल आ गया है, भक्ति का समय आ गया है, इस भक्ति समय के लिए गुप्त रखा हुआ था, नहीं बताना किसी को, लेकिन पुण्य आत्माओं को उस जैसे वाहे गुरु राम राम सीताराम राधे श्याम, इस लालच में ये पुण्यात्मा भक्ति करते रहते हैं, यानी परमात्मा की चाह बनी रहती है। और साथ में साधु संत एक सेवा की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था करते हैं, इसमें आने से सेवा का भी पुण्य होता है, परमात्मा की वाणी पढ़ने से भी यज्ञ बनती रहती है। इस कारण से उनको आने वाले समय में जब मनुष्य शरीर मिलता है तो वो पुण्य उनके साथ कुछ शेष रह जाते हैं और फिर भी उनमें भक्ति की चाह रह जाती है। तो इस कारण से इस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने इस समय तक ये सभी वास्तविक मंत्र छुपा कर रखे हुए थे, ये किसी को नहीं बताने थे, लेकिन जिनको उन्होंने दिए उनका मोक्ष जरूर करना था, उनको दिए हैं, उन्होंने भक्ति की है, लेकिन उनको आगे किसी को देने का आदेश नहीं था। जैसे आपने रात्रि के समय जन्म साखी में, साखी समुद्र में पढ़ा, गुरु नानक देव जी के पीछे बाला और मर्दाना आ रहे थे और समुद्र पर चल रहे थे, तो गुरु नानक देव जी ने उन्होंने कहा था कि तुम वाहे गुरु करके मेरे पीछे पीछे आ जाना। वो अभी चल पड़े ऐसे ही, और गुरु नानक जी वो दो अक्षर का नाम सतनाम को उच्चारण करके जानबूझ कर उनको सुना रहे थे, देखता हूं ये नकल करते हैं मेरे वचन पर डटते। तो जवान से बोलने लगे आवाज में, जैसे ओम, फिर दूसरा मंत्र, विधि से नहीं जाप कर रहे थे, केवल उनको सुना रहे थे। तो मर्दाना जी भी वो वाहे गुरु छोड़ करके और वो जाप करने लगे जो गुरु जी सतनाम को बोलते हुए आ रहे थे। तो मर्दाना जी डूबने लगे, तब गुरु नानक जी ने कहा भाई तो नाम गलत जपन लग गया, तो वाहेगुरु बोल। वाहेगुरु कौन? कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, तो उसका नाम ले। तो वाहेगुरु वाहेगुरु, देखो प्रत्येक कोई भी मंत्र है, जैसे आप वेद का मंत्र कोई लेकर पढ़ने लग जाओ उसका लाभ मिलेगा, आप अमृतवाणी गुरु नानक जी की या परमात्मा कबीर साहब की या किसी संत की वाणी को पढ़ते उसका भी लाभ मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं है उससे। उसको पुण्य अवश्य है, कुछ लाभ मिलेगा, कुछ आंशिक, लेकिन मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा सभी प्रक्रियाओं से, जैसे किसी ने ग्लूकोज चढ़वा ली वो भी लाभ है, लेकिन रोग नहीं कटेगा उससे। तो ऐसा व्यवस्था बना रही कि मरे नहीं, वो ग्लूकोज से मरेगा नहीं, काफी देर चलेगा शरीर। इस प्रकार जो अन्य साधना है भगवान वो बताई गई है हमारे उन पंथों में, तो वो अभी तक जीवित है, वो आत्माएं अभी तक, अर्थात उनमें भक्ति की कसक है। अब ये ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो वास्तविक है, अब ये आगे चलेंगे। तो इसलिए उस पूरे सिख पंथ में वास्तविक मंत्र जाप नहीं है, वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम वो दो अक्षर का है, सतनाम सतनाम जाप नहीं करना, जैसे हम राम राम कहते हैं, राम राम कोई जाप नहीं है, ये तो एक अलग भगवान के एक शक्ति भक्ति बोधक शब्द है। और राम का नाम भिन्न भिन्न है, जैसे ब्रह्म का ओम है, पूर्ण ब्रह्म का ओम तत् और सत, तत् और सत्य सांकेतिक है, अलग मंत्र है, ओम तत् सत, ओम तत् सत्य कोई जाप नहीं है। तो इस प्रकार ये साधना थी। तो कहने का भाव यह कि इस प्रकार हम जब सत साधना करेंगे तभी हमारा मोक्ष होगा। तो इस वो अब इसी प्रकार आप पूरे जन्मों में बहुत बहुत भक्ति करते हुए आ रहे हो तभी ये शरण मिली है आपको, नहीं तो ये मार्ग जल्दी से नहीं मिल सकता। आप बहुत पुण्य आत्मा है, क्योंकि आपके शुभ कर्मों की आप स्वयं नहीं जान सकते, ये दास के पास वो पैमाना है नापन का, क्या बता रखा है, लखबर सूरा जू जही लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। ऐसी पुण्य आत्मा लाख लाख बार रही हो, लखबर सूरा जो जही लखबर सावत दे, कहते हैं जैसे एक सूरवीर क्या होता है, सूरवीर जो सूरमा उसको कहते हैं जो अन्याय सहन नहीं करता और किसी और कोई पाप उपद्रव नहीं करता, किसी बहन बेटी को बेसिक बलवान है लेकिन दुष्कर्म मिसयूज ऑफ पावर नहीं करता, वो सूरवीर होता है। और वो सामने लड़कर मर जाता है न्याय के विरुद्ध, उल्टा कदम नहीं रखता, इतनी पुण्य आत्मा होती है। कहते ऐसा ऐसा तू लाखों बार रहा हो, लखबर सूरा जोज ही लखबर सावत दे। सावत दे कैसे होती है कि किसी के हाथ घुटनों से आगे नीचे तक आ जाते हैं, किसी का एक बड़ा होता है, किसी के दोनों भी हो जाते हैं। वो बहुत जन्मों की पुण्य आत्मा हो, बहुत पुण्यकर्मी आत्मा मानी जाती है। ऐसे ऐसे भी तेरे जन्म लाखों बार हो चुका हो तू, और लख बार यति जहान में। जैसे यति एक तो जति होता है, जति वो होता है केवल अपनी पत्नी से ही वो संबंध रखता है, अन्य की तरफ नहीं झांकता। एक यति होता है वो कभी स्त्री को छूता ही नहीं है। तो कहते लखबर यति जहान में, तब की तो सतगुरु शरणा ले। बात कहने का भाव यह है कि मान ले, क्योंकि यति रहना भी एक बहुत बड़ी भक्ति की आड़ ही होती है। बगैर भक्त ज्यादा भक्ति ना होगी वो यति नहीं रह सकता, कभी ना कभी दिल्ली ओठ छोड़ दे जाया कर। वो ऐसा भी तू रह चुका, पुण्य इतने थे कभी तू अपने दिल को डांट चुका, नहीं तेरे क्या नहीं करता, वो भी खत्म हुआ क्योंकि आप यति भी रहे और भक्ति सही ढंग की नहीं, तो फिर पशु बन गया, फिर उसी उन्हीं क्रियाओं फिर शुरू हो गया। फिर क्या कहते हैं, गोरख से ज्ञानी घने ये सुख दे जति जिहान, सीता सी बहु भारिया प्रसंत दूरे अस्थान। गोरख से ज्ञानी घने, परमात्मा गोरखनाथ जी को मिले थे, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उनको भी ये तत्व ज्ञान से परिचित किया था। फिर वो औरों को समझाने में बड़े प्रसिद्ध हो गए कि बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, लेकिन तत्व ज्ञान सार नाम नहीं था उनके पास, ज्ञानी बन गया वो। फिर भी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, मेरे ज्ञान न समझ के करा कितने ज्ञानी पाक जाएंगे। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान, अब सुखदेव को जति बोला गया है, यति नहीं। अब सुखदेव जति जिहान, सुखदेव ने फिर बाद में शादी करवा ली थी, उसके बाद क्योंकि मर्यादा में रहा, एक पत्नी व्रत पर डटा रहा तो जति कह रहा। कहते सीता सी बहु भारिया, सीता जी को बहुत ही ज्यादा सती माना जाता है, अपने पति रामचंद्र के अतिरिक्त उसका रावण के प्रति स्वप्न में भाव नहीं बन पाया। कहते ऐसी भी बहुत पत्नियां मिल जाएंगी, इनकी भी कमी नहीं है बहन बेटियों की। सुखदेव से गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान, क्या कितने का सुखदेव जैसे जति भी, और सीता जैसी बहु भारिया, सीता जैसी पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन संत दूर स्थान, कोई पूर्ण संत बहुत दूर, संत के घर बहुत दूर हैं। जैसे शाम को आपने बताया था कि कोटो मध्य कोई नहीं रजू मकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे छू मकरा। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को प्रफुल्लित करना है, आगे बढ़ाना है। तो आप कितने पुण्यकर्मी हो, कहते हैं लखबर सूरा जोज भी लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, जब कोई सतगुरु शरणा दे। आप ना जाने कितने कितने जन्मों में, कौन कौन से युगों में कितनी अच्छी आत्मा रहे हो, साधनाएं भी की हैं आपने, मर्यादाएं भी रखी हैं आपने, इंद्रियों पर काबू भी कर लिया, लेकिन उन्हीं पुण्यात्माओं को ये संघर्ष करते हुए आ रहे हो। और कभी कबीर परमात्मा के साथ जब आए थे प्रभु, आज से 500-600 वर्ष पूर्व, उस समय 64 लाख शिष्य उस परमात्मा के हुए थे, और वही आत्माएं आज फिर आप, वही आत्माएं संग, पहले वो ही आएंगी जो 64 लाख थे पार नहीं हुए, एक छोटी सी परीक्षा के अंदर फेल हो गए थे, तो वो लेकिन वो गुरुद्रोही नहीं हुए थे, आप उन्हीं में से हो। तो आप इतनी पुण्यात्मा हो जो आपको यह मार्ग मिल रहा है, कारण कोई भी बनता है, कोई मित्र मिल जाता है, कोई सहेली मिल जाती है, आजा मेरी बहन, आजा भाई, आजा आपको ज्ञान सुन लो, ये कैसेट सुन लो, ये किताब पढ़ के देखो। तो जो पुण्यात्मा इनको सुन लेती है वो तुरंत आ जाती है, वो कौन होती है, हमारी बोली बोल है सो देसी मारा, हमारी बोली बोल है जो देसी मारा। कैसे जैसे आपको पिछले सत्संग में भी सुनाया था, प्रत्येक सत्संग में ये उदाहरण देने पड़ते हैं। एक कोयल होती है, कोयल, कोयल अपने अलग घोंसला बना करके अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि वो कौवा खा जाते हैं, कौवे छोड़ते नहीं उनके अंडों को, नष्ट कर देते हैं। वो समझदारी करती है, जो मादा कौवा होती है उस कौवी के ने, जिस कौवी ने अंडे दे रखे होते हैं, अंडे उत्पन्न करने के बाद घोंसले से वो चुग्गा चुनने जाती, आहार करने जंगल में दूर चली जाती है। पीछे से वो मादा कोयल उस मादा कौवी के घोंसले में अंडे उत्पन्न कर जाती है। जब वो कौवी आती है दोबारा, तो वो देखती है तेरे दो अंडे थे, चार हो गए। अब उसको पता नहीं ये दो तेरे कौन से हैं, नहीं तो नीचे गिर दे या खा ले उनको। इस दृष्टिकोण से वो उन चारों के चारों को परवरिश करती है, उनको परिपक्व करती है। बच्चे एक जैसे शकल के होते हैं, अंतर नहीं होता, लेकिन उसमें वो उड़ने लग जाते हैं, दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, दूर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। वो कोयल देखती रहती है, वो कोयल दूर बैठकर एक किसी बाग में या किसी वृक्ष की टहनी पर अपनी आवाज लगाती है, कुहू कुहू कुहू। जो कोयल के बच्चे होते हैं वो एकदम ऐसे ऐसे देखते हैं चारों तरफ, उनका नजर आते हैं क्योंकि वो उस बोली को पकड़ रहे हैं। वो कोयल के बच्चे तो उस जहां उनकी माता बोल रही है कुहू कुहू उसकी तरफ उड़कर चल पड़ते हैं, लेकिन कौवी आड़े का बाम में भी कोनी। उस कौवे के बच्चों को वो असर नहीं कर रही वो कोयल की बोली, और वो कोयल वाले उड़कर अपनी मां के पास चले जाते हैं। वो कभी थोड़ी बहुत देर दूर तो भागती है उसके पीछे, मेरे बच्चे गए बच्चे गए, फिर देखती है ये तो बहुत दूर चले गए, कहीं उन दूसरों को मेरे बच्चों को कोई हानि ना हो जाए, वो वापस आ जाती है और कोयल अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। तो एक घर में चार सदस्य हैं, तीन ने नाम ले लिया, एक ना लेता, इन्होंने कहा ना लू ना सुनो, मत हरी वाणी भी ना सुनो, मन नहीं अच्छी लगती तेरी ये बात। तो वो कौवे का बच्चा है, वो कोयल का बच्चा नहीं है। उसने कभी जन्म में भक्ति स्टार्ट नहीं की है, वो कभी सतगुरु के संग में नहीं रहा है। और जो पहले से प्रभु के जैसे 600 साल पहले आप उनके साथ थे, आप जरा सी वाणी सुनते ही आपकी आकर्षण बढ़ जाता है, भले ही थोड़ा समय लग जाता है लेकिन आप तुरंत आ जाते हो। तो ऐसे इस प्रकार कोयल और काग के बच्चों में अंतर है, अर्थात जो सतगुरु के संग में नहीं रहे हैं वो अभी कौवे के बच्चे समझो, अर्थात काल के ही अधीन हैं, उनको उन्होंने यही साधनाएं की हैं, सत साधना कभी नहीं स्टार्ट की। परमात्मा ने आपके ऊपर मेहर की है किसी जन्म में, तभी आप शीघ्र आ रहे हो। पहले तो ये 64 लाख आएंगे जो पहले बिछड़ गए थे हमारे भगवान से, हमारे से, और उसके बाद फिर उन 64 लाख के साथ दूसरे अरबों खरबों आएंगे, क्योंकि उनके कलम चढ़ावेंगे जैसे कलमी आम बना दिया करें। अब वो काल की भक्ति जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी परमात्मा की आगे पढ़ाई पढ़ाएंगे, जैसे किसी ने 5वीं कक्षा पास कर ली अब 8वीं तक पढ़ावेंगे, 8वीं कर ली तो 8वीं के बाद 10वीं तक, फिर BA और MA अलग अलग टीचर बदलते रहते हैं। अब पता लग जाएगा जो साधना वो कर रहे हैं तत्व ज्ञान से पता चलेगा, तो जिसने 5वीं पास हो चुकी है तो वो 6ठी में प्रवेश लेना ही चाहिए, बुद्धिमता है, बार बार उसी में रिपीटेशन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही जो साधनाएं तुम कर रहे थे ये तो असंग जन्मों से करते आ रहे हो, कोटि जन्म तुम ब्रह्मत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौवा हंस बगारे, कितनी बार ये साधनाएं आप कर चुके हो। जैसे गीता जी में लिखा है कि अर्जुन तेरे और चौथे जाएंगे 5वें श्लोक में, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये राजा लोग और तू और मैं, ये सैनिक अभी उत्पन्न है, हम पहले भी थे आगे भी होंगे, अर्थात तेरे और मेरे जन्म मृत्यु होती ही रहेगी, इसका कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। यदि तूने जन्म मृत्यु से छुटकारा पाना है, पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो उसके लिए तू तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। फिर कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, उसकी कृपा से तू उस परमेश्वर की सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में कहा है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान के आधार से, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस शत्रु उलझे हुए ज्ञान को, गुत्थी को काट कर उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पर गए हुए साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म फिर नहीं होता। वो सतलोक है, शाश्वत स्थान है। अब गरीबदास महाराज जी उस तत्व ज्ञान को सुन रहे थे, 10 वर्ष के बालक। तब गरीबदास जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, आपका वो सतलोक कैसा है, आपके दास को एक बार दिखाने की कृपा करो। तब परमात्मा ने कहा, ले बेटा उपदेश ले, पहले प्रथम मंत्र ले। प्रथम मंत्र दिया, अब आ मेरे साथ बैठ। आसन पदम लगा के, जैसे आसन पदम लगा के बैठा था, आत्मा शरीर से जीव निकाल लिया, शरीर जो का तो रखा है बैठा है। ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, शिव का लोक दिखाया और धर्मराज का लोक दिखाया, लोक स्थान ब्रह्म लोक दिखाया बताए, और 21 ब्रह्मांड की सारी सैल करा के फिर 7 संख ब्रह्मांड के माध्यम अंदर से परब्रह्म के लोक दिखाते हुए सतलोक में ले गए और वो सब व्यवस्था ऊपर की दिखाई। उधर से बहुत समय बीत गया, 2-3 घंटे 4 घंटे बीत गए। वो दूसरे जो पाली थे गरीबदास जी के साथ, दूसरे गवाले थे, उन्होंने देखा कि भाई वो लड़की का लड़का, क्योंकि वहां के भाणजे थे गरीबदास जी महाराज छुड़ानी के, वो दूसरे जो बड़े पाली थे ग्वाले थे, वो कहने लगे, रहे वो छोरी का छोरा कहाँ है, वो लड़का कहाँ है बांजा। वो बोले, वो तो महात्मा बना बैठा, देख वो बैठा समाधि लाए ला, उसने बुला के अपने गांव घेर है, गवों के पास खड़ा हो, 1-2-4-2-3 घंटे हो गया हमने इसकी गवें घेर रहे हैं, बन गया भगत। तो बाबा जी कहाँ गया रहे, बाबा जी तो पता नहीं भाई कित गया, लिया उसको उठ बुला लो, कहाँ है वो लड़के। एक जना जाके कहने लगा, ओ गरीबू, गरीबदास नाम थे उसको, गरीबू कहा करते थे, गरीबा, ओ गरीबू उठ ले, गरीबू आजा। निकट आके जब उसको पकड़ के बोला, ओ भगत खड़ा हो ले, अपने गाय घेर ले। अब उसमें शरीर था नहीं, वो तो शरीर रखा था, जीव नहीं था। जब उसने ऐसे करके कहा, ओ भगत जी खड़ा हो, चल तेरी गांव गायों के पास चल, पाली खड़ा हो, तो ऐसे लुढ़क गया हो, वो शरीर गिर गया। तो उसने आवाज लगाई भी, भाग गया, यो भाणजा तो मर गया, इसकी मृत्यु होगी। अब वो सब पाली थे दौड़ कर आए, देखा सचमुच ये तो खत्म है। अब कुछ रोने लग गए, हाय यो क्या किया, मना करें थे इसने, रस वो जंतर मंत्र का दूध पिया गया, वो महात्मा ने छोरा मार दिया, लड़के की मृत्यु कर दी, हाय मर गए। लड़की का अकेला ही लड़का है, 12 वर्ष के बाद होया था वो लड़की, इसकी माँ रो रो कर टक्कर मार कर मर जाएगी, क्या होगा भगवान। अब वो 2-3 बच्चे वो पाली गांव में आए, सारी सती थी बताई कि एक बाबा जी आया था, कुंवारी गांव का दूध काट के पिया दिया, हम तो नाटकी, हमने तो मना कर दिया था, लेकिन इस भाणजे ने बच्चे ने पी लिया गरीबदू ने, और वो मर गया। नो सुनते ही उसके माता पिता दोनों बेहोश हो गए गरीबदास जी के। इकलौता पुत्र वो भी 12 वर्ष के बाद शादी के उपरांत हुआ था, उसमें 12 वर्ष हो जाते, बहुत दिक्कत होती थी मानते थे, और इकलौता बेटा, कोई संतान नहीं थी, क्योंकि पहला पिता के संतान नहीं थी मतलब नाना के, और फिर बेटी का भी ना हुई, इस चिंता में फिर लड़का हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई थी। अब वो लड़का मर गया तो दोनों माता पिता बेहोश हो गए। गांव के लोगों को, व्यक्तियों को पता चला, वो दौड़ पड़े, एकदम जाकर देखा वो सचमुच मृत पड़ा है। वहां से उठाकर घर न लाए, घर में फिर पूरी व्यवस्था की, उसका अर्थी बनाई, उसका जनाजा बनाया, उसको उठा करके शमशान घाट पर ले गए, शमशान घाट के ऊपर रख दिया, चिता जलाने की तैयारी करने लगे। तभी से परमात्मा ने देखा शरीर का नष्ट को नष्ट करने जा रहे हैं, उसी समय उस आत्मा को प्रवेश, पुनः प्रवेश कर दिया गरीबदास जी वाली को, और वो शरीर ऐसे कंपन करने लगा, और वो जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के, वो अपने आप टूट गए। और जब देखा कि सत्य वो ये वाणी बोलता हुआ वो गरीबदास जी खड़े हुए, लेकिन उस समय वो गरीब यहां की लोकल लैंग्वेज नहीं बोल रहा था, उस समय ये वाणी अमृत वाणी बोल रहे थे, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन नमेक, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधार दिया मुझे, सतगुरु मिले कबीर, इस तरह की वाणी बोलने लग गया। वो जीवित तो हो गया, लेकिन ये जो वाणी वो अमृत वाणी बोल रहे थे आंखों देखी, उससे ग्रामीण परिचित नहीं थे। तो गांव के व्यक्ति कहने लगे, भला कर भगवान हे परमात्मा, तेरा शुक्र, सो सो शुक्र तुम्हारे, आपके आपने जो छोरा जीवित तक कर दिया, लेकिन जो पागल हो गया, ये बावड़ा हो गया, बावड़ा पागल। तो समझदार व्यक्ति थे अपने आप को, जो बुढ़े बुजुर्ग के थे, कोई बात ना, या छोरी लड़की इसके सारे अपने दिन काट लेगी, जिसा बावड़ा बांगा बावड़ा है, और मर जाता तो भाई, या तो मर साथ, या छोरी मर जाती, लड़की मर जाती। तो कहने का भाव यह है कि उस तत्व ज्ञान से युक्त अमृत वाणी को ग्रामीण से ग्रामीण परिचित नहीं थे। अमृत वाणी ये जो आपको दास बोल बोल के सुना रहा है, ये गरीब दास जी महाराज के द्वारा ही बोली गई, जो आंखों देखने के बाद। तो वो गांव वाले परिचित नहीं थे इससे कि ये के बोल रहा है, लेकिन वो उनको तो ऊट पटांग बोलता दिखा था, बावड़िया कहने लग गए उस परमात्मा के प्यारी आत्मा को, इन्होंने बावड़ा है बावड़िया, वो आ गया, उसका रानी नाम था उनकी पूज्य माता जी का, ने वो कहने वो रानी का बावड़िया, वो आने लग रहा किरा के बोल रहा सारा दिन। 3 वर्ष के बाद जब वो 13 वर्ष के हो गए गरीबदास जी, एक दादू पंथी महात्मा आ गए, दादू पंथ के, दादू जी को भी परमात्मा कबीर जी मिले थे, और वो दादू पंथी महात्मा संतों की वाणी से परिचित था, गोपाल दास नाम था, और बनिए के घर का उसका शरीर था, वो मतलब चौथे आश्रम में था, 60-62 साल का, 65 साल का हो रहा था, वर्ष का हो रहा था, और जगह जगह जाकर के वो ज्ञान प्रचार करता था। जो गांव में जब वो दादू पंथी महात्मा आकर रुकया, तो 2-4 ग्रामीण इकट्ठे हो गए और कहने लगे, महात्मा जी, साधु की विद्या को संत ही काट सकता है, हमारे लड़की का लड़का बावड़ा हो गया, एक संत ने पता नहीं किसे जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का दूध निकाल के पिला दिया, और वो पागल हो रहा है, आप कुछ उसका इलाज कर दो। अब गोपाल दास ने, महात्मा ने सोचा भी इलाज देख लेता हूं, वो भी थोड़ी बहुत भूत विद्या जाने था, उसने बुला लिया, तो लड़के का नाना भी 5-10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर के वहां लड़के को लेकर गए। दादू जी के उस अनुयायी गोपाल दास संत ने पूछा कि बेटा, वो कौन था जिसने मेरे आपको ऐसा आपका ऐसा हाल कर दिया, आपकी जो है ना जीवन नष्ट कर दिया, आपको पागल बना दिया। तब परमात्मा ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माए कबीर होया। ओए होए, ने बोला मैं पार करा जिसने, और हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम को पार किया, नानक जी को पार किया जिसने, दादू जी का भी उद्धार किया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, वही मुझे आकर मिला था। ये अमृत वाणी 1 घंटे तक धारा प्रवाही बोलते रहे गरीबदास जी। अब वो तो परिचित था, संत था, वाणी से परिचित था, हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, 60 साल का बूढ़ा 13 साल के बच्चे के सामने, और कहने लगा, हे भगवान, हे महात्मा जी, ये अमृत वाणी नोट करवा दो मेरे तय, कि तो आने वाले समय में जीवों का उद्धार करेगी। तो यूं कहकर के वो जो 60-65 साल का दादू पंथी महात्मा एक 13 साल के बालक बौड़िए का हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया, तो गांव वाला ने सोचा, यो बाबा जी भी पागल हो गया, इसकी गिल है, यो बाबा जी भी मूर्ख है, उसके आगे बच्चे के आगे हाथ जोड़ रहा है, कि इसका भी कोई असर हो गया इसी का। कहने का भाव यह है कि ज्यादा आग्रह की उस गोपाल दास ने। तब गरीबदास जी ने कहा कि अगर पूरी वाणी लिखे तो लिखवाऊं, कि बीच में छोड़कर भाग जाए, अगर नहीं महाराज, जितने दिन तुमको, मैं तो फरी हूं करते, आप जैसा आदेश दोगे वैसा करूंगा। गरीबदास जी का अपना ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का वृक्ष था, जांड का वृक्ष, जंड, उसके नीचे बैठ करके परमात्मा की अमृतवाणी आंखों देखा हाल गरीबदास जी बोला करते थे, और दादू पंथी महात्मा गोपाल दास लिखा करते थे, वही सदग्रंथ आज हमारे पास। ये हमने 4 पार्ट करवा रखे हैं। ये पूरी वाणी, इसमें कुछ कबीर साहब की है थोड़ी सी, ये सदग्रंथ रूप में ये चार हिस्सों में आज हमारे पास है। ये वही अमृतवाणी है जिनको मैं ये दास आपको पढ़ पढ़ के सुनाकर अनुवाद करता उन्हीं की दी बुद्धि के अनुसार। नहीं, इस सदग्रंथ को खोलना वेदों से भी ज्यादा कठिन है, उस परमात्मा की कृपा के बिना ये सदग्रंथ नहीं कर सकते। उसके बाद गरीबदास जी ने उस परम पिता की महिमा गाई और ये यथार्थ ज्ञान समझाया। बोलो सतगुरुदेव की जय।